بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, क्षमा कीजिएगा, आज शनिवार है, फरवरी की 27, रजब की 15 और इस्फंद माह की 9 तारीख। मित्रों, हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi। आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ हम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे नया सवेरा, और इस सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। तो श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान, रूस और वेनेजुएला ने सीरिया में अमरीकी बमबारी की कड़ी निंदा की है। इस्लामी प्रतिरोधी संगठनों की जवाबी कार्रवाई के डर से इराक में मौजूद अमरीकी सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। तेहरान का कहना है कि क्षेत्र में तकफीरी आतंकवाद को फिर से पैर नहीं पसारने देंगे। भारत में 3 विवादित कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। और अब आप मरियम मेरदादी और गायम रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए।
सीरिया पर अमरीकी हमले की ईरान, रूस और वेनेजुएला ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सीरिया के इराक से मिले सीमावर्ती इलाकों पर अमरीकी हमलों की दमिश्क सरकार ने निंदा करते हुए अमरीका से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की मांग की है। साना समाचार एजेंसी के अनुसार सीरियाई विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में इराक की सीमा से सटे सीरिया के देरुजूर प्रांत के इलाके पर अमरीका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि इस हमले से क्षेत्र के हालात तनावपूर्ण हो जाएंगे। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अमेरिका की नई सरकार की नकारात्मक नीति का नमूना बताया। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगी, न कि जंगल के कानून का, जिसे अमेरिका की पूर्व सरकार ने क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संकटों के संबंध में अपनाया था। इस रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क ने अमेरिका से मांग की है कि वो सीरिया के संबंध में अपनी दुश्मनी को खत्म कर दे। सीरियाई राष्ट्र और सरकार को निशाना बनाने वाले आतंकवादी गुटों का समर्थन बंद करे और इन आतंकवादी गुटों पर पूंजी निवेश न करे। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार तड़के ऐलान किया था कि इस देश की सेना ने राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश से पूर्वी सीरिया में प्रतिरोध गुटों के ठिकानों पर बमबारी की है।
इराक के सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि सीरिया से लगने वाली इराक की सीमा पर अमरीकी बमबारी की प्रतिक्रिया के डर से इस देश में मौजूद अमरीकी सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। इसना समाचार एजेंसी के अनुसार अमरीकी सेना ने इराक में मौजूद अपने सैनिकों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया है। यही कारण है कि इराक के अल बलद छावनी में अमरीकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। इन अमरीकी सैनिकों से कहा गया है कि वे छावनी के बाहर अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहें। इस सूत्र के अनुसार इराक में अमरीकी सैनिकों का हाई अलर्ट आगे कई दिनों तक जारी रह सकता है। याद रहे कि अमरीका के युद्धक विमानों ने शुक्रवार को सुबह सीरिया से मिलने वाली इराक की सीमा पर बमबारी की थी। यह बमबारी अलबुल कमाल और अलगायम के बीच की गई। इराक के सांसद अहमद अल असदी के अनुसार इराक के स्वयंसेवियों पर किए जाने वाले आक्रमण में 30 लोग शहीद और घायल हुए हैं।
इराकी विदेश मंत्री एक महीने में दूसरी बार तेहरान की यात्रा पर पहुंचे हैं। इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ईरान के दौरे पर तेहरान आए हुए हैं। वे इस्लामी गणतंत्र ईरान के अधिकारियों से द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने इससे पहले बताया था कि इराकी विदेश मंत्री अपने ईरानी समकक्ष मोहम्मद जवाद जरीफ सहित ईरान के सुरक्षा अधिकारियों और राजनेताओं से मुलाकात करेंगे। ये पिछले एक महीने के भीतर इराक के विदेश मंत्री का तेहरान का दूसरा दौरा है। इससे पहले फुआद हुसैनी ने 3 फरवरी को तेहरान दौरे पर राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी, विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद के सचिव अली शमखानी सहित कई दूसरे अधिकारियों से भेंट वार्ताएं की थीं।
इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने शनिवार को तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की। ईरान और इराक के विदेश मंत्रियों ने तेहरान में क्षेत्र के हालिया परिवर्तनों के बारे में विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने इराक की वर्तमान घटनाओं पर बात की। जवाद जरीफ और फुआद हुसैन ने अपनी वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार विमर्श किया। इराक के विदेश मंत्री की पिछले एक महीने के दौरान ईरान की ये दूसरी यात्रा है।
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा की उच्च परिषद के सचिव ने कहा है कि तेहरान सहित आतंकवाद विरोधी दूसरे देश क्षेत्र में पुनः तकफीरी आतंकवाद को फैलने नहीं देंगे। अली शमखानी ने शनिवार को तेहरान में इराक के विदेश मंत्री के साथ भेंट में अमरीका की ओर से इराक में की गई कार्रवाई की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि इराक से विदेशी सैनिकों को निकाल बाहर करने के संसद के कानून को पारित करने में विलंब भी तनाव एवं संकट के बढ़ने का कारण बना है। अली शमखानी का कहना था कि आज इराक कुशल धार्मिक नेतृत्व, राजनेताओं की दूरदर्शिता और प्रतिरोधक गुटों के प्रतिरोध के कारण गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा कि इराक में अमरीका की हालिया कार्रवाई दाइश की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा की उच्च परिषद के सचिव अली शमखानी ने अत्याचारग्रस्त यमनियों की स्थिति की ओर संकेत करते हुए यमन युद्ध को समाप्त कराने के लिए ईरान की तत्परता की घोषणा की।
ईरान ने ऐलान किया है कि IAEA को अगले 3 महीनों तक कैमरों तक पहुंच का अधिकार नहीं होगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने IAEA को चेतावनी दी है कि अगर 3 महीने के भीतर पाबंदियां नहीं खत्म हुई तो ईरान की परमाणु गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाले उसके सारे कैमरे हटा दिए जाएंगे। अली अकबर सालेही ने ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बीच हुई हालिया सहमति का जिक्र करते हुए कहा कि IAEA को अगले 3 महीने तक सूचनाओं को रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम और कैमरों तक पहुंच का अधिकार नहीं है और अगले दिन क्षमा कीजिए, और अगर अगले 3 महीनों के भीतर पाबंदियां नहीं हटी तो ये सूचनाएं मिटा दी जाएंगी और एजेंसी के कैमरे हटा दिए जाएंगे। इरना के अनुसार अली अकबर सालेही ने एक टीवी प्रोग्राम में पाबंदियों के हटने और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा के लिए स्ट्रैटेजिक कानून तथा ईरान की ओर से पूरक प्रोटोकॉल का पालन रोके जाने के बारे में कहा कि कानून में ये प्रावधान है कि अगर इस कानून के पास होने के 2 महीने के भीतर JCPOA में सामने वाले पक्ष ने अपने वादे को पूरा न किया तो तेहरान को एडिशनल या पूरक प्रोटोकॉल पर अमल को रोकने का अधिकार होगा, जिसे अंजाम दिया गया। उन्होंने IAEA के महानिदेशक रफ़ाइल ग्रोसी के तेहरान दौरे और उनसे हुई अपनी मुलाकात के बारे में कहा कि इस मुलाकात में उन्हें बताया गया कि ईरान एडिशनल प्रोटोकॉल को रोक देगा, और ग्रोसी ने भी कहा कि वो कानून को लागू करने के ईरान के अधिकार को मानते हैं।
भारत में 3 कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 100 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वही मंत्री बातचीत के लिए आए जिसके पास अधिकार हों। टिकैत ने कहा कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर के पास पावर होती तो वे कानून वापस ले लेते, क्योंकि वे भी खेती व किसानी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जितने भी मंत्रियों की बातचीत के लिए भेजती है उनकी पावर में कटौती करके उन्हें भेजा जाता है। NDTV से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा, पूरी पावर देकर सरकार किसी को भेजे, उन्हें पूरी ताकत देकर भेजे कि आप जो कहेंगे वो हम मान जाएंगे तो फैसला हो जाएगा। अब सरकार मंत्रियों को तो जरूर भेज रही है, लेकिन उनके अधिकारों में कटौती करके भेज रही है तो फिर कैसे होगा। गौरतलब है कि 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी ओर राकेश टिकैत महापंचायतों में भाग ले रहे हैं, वे राजस्थान में अलग अलग सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के सीकर में आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों को कोई नहीं बांट पाएगा। अब देश में नई बिरादरी पैदा हो रही है जिसका नाम है किसान।
भारत के कोस्ट गार्ड ने हिंद महासागर में म्यांमार के 8 रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों के डूबने की सूचना दी है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों से भरी एक नाव पर 90 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोग डूब गए और लापता हो गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इन शरणार्थियों को भारतीय इलाके में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले UN शरणार्थी एजेंसी ने इस नाव पर सवार शरणार्थियों के डूबने या लापता होने की ओर से सचेत किया था। गौरतलब है कि म्यांमार के मुसलमान इस देश के पश्चिमी भागों में रहते हैं। पिछले 3 साल से उन्हें इस देश के चरमपंथी बौद्ध धर्मियों के हिंसक व्यवहार का सामना है, जिसकी वजह से वे अपना वतन छोड़ने और बांग्लादेश की सीमाओं पर पनाह लेने पर मजबूर हुए। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ चरमपंथी बौद्ध धर्मियों को इस देश की सेना का समर्थन हासिल है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस देश के सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में इराक के सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। फार्स न्यूज के अनुसार आरिफ अलवी ने शुक्रवार को इराक के रक्षा मंत्री के साथ भेंटवार्ता में ये प्रस्ताव उनके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहुत अधिक महत्व देता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के अनुसार हम इराक के साथ व्यापारिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में अधिक से अधिक संबंध विस्तार करने के इच्छुक हैं। आरिफ अलवी ने साथ ये भी प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान इराक को तकनीकी सेवा पेश करके इस देश के मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने में भी सहायता कर सकता है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شوتا راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ شوتا امریکہ جو آج پوری دنیا میں دادا گیری کرتے پھرتا ہے، اس کی ارتھ ویوستھا کی حالت یہ ہے کہ اس کے لگ بھگ 40% سینک اپنے بھوکے پریجنوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کیندروں پر جاتے اور سمپرک سادھتے ہیں جہاں سے بھوجن و کھادیہ پدارتھوں کو وترت کیا جاتا ہے۔ امریکی سینکوں کی جب یہ دشا ہے تو سامان لوگوں کی حالت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے 26 مارچ 2015 سے یمن کے نردوش لوگوں کے خلاف حملہ آرمبھ کر رکھا ہے، پر یمن کی بہادر جنتا کے پرتیرودھ کے کارن آج تک وہ یمن میں اپنے درشٹیگت لکھیوں کو نہ سادھ سکا، جبکہ اسے امریکہ اور برٹن جیسے پشمی دیشوں کا سمرتھن و آشیرواد بھی پراپت ہے، پر یمنی لوگ اچل پروت کی بھانتی ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے ورشٹھ نیتا غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ بھارت کی کیندر سرکار نے کشمیر کو ایک ضلع کا درجہ دیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے بل دے کر کہا کہ کشمیر کو ترنت راجیہ کا درجہ واپس دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہی ایسی پارٹی ہے جو کشمیر کے لوگوں کے ہیتوں کا دھیان رکھے گی۔
یہ آندولن چلتا رہے گا، یہ آندولن کسانوں کے ساتھ ساتھ بھارت دیش کو پرائیویٹ ہونے سے بچانے کا آندولن ہے۔
یہ تھے ہماری آج کی چرچا کے وشے۔ شوتاؤ امریکہ جو پوری دنیا میں دادا گیری کرتے پھرتا ہے، اس کی ارتھ ویوستھا کی حالت یہ ہے کہ اس کے لگ بھگ 40% سینک اپنے بھوکے پریجنوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کیندروں پر جاتے اور ان سے سمپرک کرتے ہیں جہاں سے بھوجن و کھادیہ پدارتھوں کو وترت کیا جاتا ہے۔ جب امریکی سینکوں کی یہ دشا ہے تو سامان لوگوں کی حالت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سے جانکار حلقوں کا کہنا و ماننا ہے کہ امریکہ سعودی عرب اور دوسرے دیشوں کا جو سمرتھن کر رہا ہے، اس کی وجہ ان دیشوں کا پیسہ ہے جسے اٹھنے کے لیے امریکہ ان کا سمرتھن کرتا ہے۔ نجف زادے کی رپورٹ پیش کرنے ساتھی محمد علی قمی۔
بن سلمان کے لیے اپینڈکس کے درد سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنر کا وائٹ ہاؤس سے چلا جانا ہے۔ کشنر کے پاس کچھ میسج بھیج کر بھی جٹل سے جٹل مدوں کا سمادھان کیا جا سکتا تھا۔ اب بائیڈن آ گئے اور وہ اس پرکار دکھا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے دوسرے یوراج انہیں ادھک اچھے لگتے ہیں۔ سعودی نریش، ملک سلمان اور جو بائیڈن کے بیچ وارتا کے بارے میں اس پرکار کہا گیا ہے کہ بائیڈن بھی سعودی عرب کے ہیتوں کی رکشا کرنے کے پرتی وچن بدھ ہیں۔ $533 million۔ اس سے پہلے بھی امریکہ سعودی عرب کے ہتوں کی رکشا کے پرتی کٹیبدھ تھا، پرنتو سعودی اتہاس کا سب سے مہنگا سینے سمجھوتا بھی بادہ نہ بن سکا کہ سعودی عرب کو اپنے ہتوں کی قیمت نہ چکانی پڑے۔ اس سمے ایک رپورٹ پرکاشت ہوئی جو اس بات کی سوچک ہے کہ خاشقجی کے ہتھیاروں نے بن سلمان سے سمبندھت 2 فائٹر جیٹوں سے لابھ اٹھایا تھا، اور خاشقجی کی ہتیا سیدھے کراؤن پرنس کے آدیش سے کی گئی تھی، اور اس چیز کے اوپن ہو جانے سے 35 ورشی بن سلمان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ لیکھک الماری کے مطابق بڑے شرم کی بات ہے کہ امریکی پرشاسن اب بھی سعودی عرب کا پکش لے رہا ہے، وشیش کر اس سمے جب وبھن کھیتروں میں امریکی ارتھ ویوستھا کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اور اسے سعودی عرب کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ 40% of military families have had trouble putting food on. جن دنوں CBS ٹی وی چینل کو اس خبر سے جھٹکا لگا کہ لگ بھگ 40% امریکی فوجی اپنے بھوکے پریجنوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بھوجن وترن کیندروں پر جاتے ہیں اور یہ امریکہ کو بھاری آرتھک سنکٹ کا سامنا ہونے کا سوچک ہے، اور اب سعودی عرب کو دوہنے کی نئی شیلیوں کو لاگو کیے جانے کی آوشیکتا کا آبھاس کیا جا رہا ہے، اور بھوک مٹانے کی پارمپرک شیلی جو بائیڈن کے شاسن کال میں بھی جاری رہے گی۔ इस बीच उस रिपोर्ट का प्रकाशित होना जो इस बात का सूचक है कि खाशोगजी की हत्या सीधे बिन सलमान के आदेश से हुई थी और व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार बिन सलमान को बदलने के बारे में होने वाले विचार विमर्श सऊदी अरब पर दबाव डालने और विशिष्टता लेने के मात्र हथकंडे हैं, अन्यथा अमरीकी अधिकारियों के वही लक्ष्य हैं जो पहले थे। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने 26 मार्च 2015 से यमन के निर्दोष लोगों के खिलाफ अपना पार्श्विक हमला आरंभ कर रखा है, पर यमन की बहादुर जनता के प्रतिरोध के कारण आज तक वो यमन में अपने दृष्टिगत लक्ष्यों को न साध सका, जबकि उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल है। यमनी लोग अचल पर्वत की भांति डटे हुए हैं और उनका कहना है कि हम पर परमाणु बम भी मार दो तब भी हम घुटने नहीं टिकेंगे। यमन पर सऊदी अरब के पार्श्विक हमलों और परिवेशन के खिलाफ यमनी लोगों ने इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशाल प्रदर्शन किया। सुल्तान सदा की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
यमन वासी हर बार से अधिक संख्या में सनआ और यमन के दूसरे प्रांतों में जमा हो रहे हैं ताकि अमेरिका और सऊदी अरब के परिवेशन और तेल उत्पादों को यमन में आने से रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के प्रति अपने विरोध को दर्शा सकें, क्योंकि यमन में भारी मानव त्रासदी उत्पन्न हुई है। लोगों ने अमेरिका, सऊदी और इसराइली गठबंधन की भर्त्सना में विरोध प्रदर्शन किए। हम अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे, हम यथावत धैर्य से काम लेते रहेंगे, जिस रास्ते में हमने कदम उठाया है उस पर आगे बढ़ेंगे। विश्व समुदाय की चुप्पी और राष्ट्र संघ की मिली भगत से प्रतिदिन यमनी लोगों के परिवेष्टन से दसियों बीमार और आम नागरिक हताहत हो रहे हैं। यमन के क्रोधित लोगों का सड़कों पर उपस्थित होना इस बात का संदेश है कि वे परिवेष्टन की समाप्ति के इच्छुक हैं। हम अमेरिका से ये कहने के लिए आए हैं कि हम डटे हुए हैं, घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे हमारा परिवेष्टन ही क्यों ना करो, हम पर हमला करो, यहाँ तक कि हम पर परमाणु हमला भी करो तब भी हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे मुकाबले में जीतेंगे। यमन के लोगों ने इस देश के 20 से अधिक क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों ने परिवेष्टन को समाप्त किए जाने की मांग करते हुए अमेरिका की आतंकवादी कार्रवाइयों की कड़ी भर्त्सना की। यमन के समस्त प्रांतों में होने वाले प्रदर्शनों का एक ही लक्ष्य था, अतिक्रमणकारियों के मुकाबले में क्रांतिकारी शैली को ही अपनाया जाएगा, किसी दूसरी को नहीं। यमन से IRIB के लिए सुल्तान सदा की रिपोर्ट।
श्रोताओ, भारत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने कश्मीर को एक जिले का दर्जा दिया है। साथ ही उन्होंने बल देकर कहा कि कश्मीर को तुरंत राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कश्मीरी लोगों के हितों का ध्यान रख सकती है।
ऑल इंडिया कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, गुलाम नबी आजाद आज जम्मू की यात्रा पर पहुंचे तो जम्मू में उन्हें लोगों की बड़ी संख्या ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने नई दिल्ली की मौजूदा हुकूमत पर जोरदार और तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने उनके अनुसार कश्मीर को एक जिले का दर्जा दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर एक जिले की हैसियत दी गई है, इस पर यहाँ के लोग इंतहाई नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में जिस तरह से लोग उनके स्वागत के लिए आगे आए, وہ اس کا سواگت کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر میں کانگریس ہی ایسی پارٹی ہے جو یہاں کے لوگوں کے ہت کا خیال رکھے گی۔ اس بھی جموں میں نئی دہلی کے ساتھ ساتھ کسانوں نے آندولن جاری رکھا اور اس اوسر پر کسانوں نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبے مانے نہیں جاتے ہیں تو وہ اپنا آندولن جاری رکھیں گے۔ اس اوسر پر انہوں نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے میں جموں کشمیر گلوبل کسان موومنٹ کا پریزیڈنٹ ہوں اور مہندر سنگھ خالسا یونائٹڈ کسان فرنٹ کے چیئرمین ہیں۔ یہاں پر سبھی آرگنائزیشنیں مل کر کسان آندولن میں شامل ہیں اور انہوں نے ریل روکو بھی کیا ہے۔ اس کے پہلے جو روڈوں کو بند کیا ہے، کجوانی چوک جام کیا تھا، اس کے پہلے ٹریکٹر ریلی بھی ہوئی تھی، تو اس سے سرکار بوکھلاہٹ میں آ گئی ہے۔ اب کیونکہ یو ٹی ہے، دلی کی سرکار کا ہی جموں میں سرکار ہے اور ان کو یہ تکلیف ہے کہ جموں میں کیوں لوگ جو ہیں اس میں ان کو کوپریٹ کر رہے ہیں۔ ایک مودی سرکار کو ایک بھرم ہے کہ جموں کے سب لوگ جو ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں، اس لیے اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جموں کا کسان جو ہے وہ کیوں اس کے خلاف بول رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں، اس کو یہ بھرم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ 25-26 کو جموں مودی آ رہے ہیں نا، ہم ان کو بتا دیں گے کہ جموں کے لوگ جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں اور کسان آندولن یہاں پر کتنا آرگنائز ہے۔ ہمارا جو آندولن ہے یہ سب دھرموں کے کسان جتنے بھی پورے دیش سے ہیں جو دلی میں کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہیں اور جب تک مہندر سنگھ خالسا کو رہا نہیں کیا جاتا یہ دھرنا جاری رہے گا۔
دیکھیے دمنکاری نیتی چل رہی ہے۔ دمنکاری نیتی جا تو انگریزوں کے زمانے میں ہوئی تھی یا بادشاہوں کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ سرکار جو آج کی ہے یہ وہی سرکاریں ہیں، انگریزوں کی سرکار یا بادشاہوں کی سرکار۔
سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروع ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا ایران بھرمڑ، پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم نیا سویرا۔
نیا سویرا،
دوستوں کاریکرم نیا سویرا کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ کاریکرم میں ہم شریمتی اینالنڈا ٹراؤسٹاڈا ٹیر کے بارے میں بات کریں گے۔
دوستو دھرم پریورتن یا اپنا پرانا دھرم بدل کر ایک دوسرا دھرم سویکار کرنے کا کام پوری جانکاری کے ساتھ ہونا چاہیے، انیتھا پچھتاوا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کام پوری کھوج بین اور ادھیان کے بعد کرتے ہیں وہ اچھے پریڑام تک پہنچتے ہیں۔ ایسا دیکھنے اور سننے میں بہت آتا ہے کہ جو لوگ سوچ سمجھ کر کوئی دھرم سویکار کرتے ہیں وہ بعد میں اسی کے پرچارک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مکھیہ کارن یہ ہے کہ انہوں نے پوری سمجھداری اور جانکاری کے بعد نئے دھرم کو سویکار کیا ہے۔
دوستو کچھ ایسا ہی انا لندا نے کیا ہے۔ انہوں نے کئی ورشوں تک کھوج بین کرنے کے بعد اسلام کو اپنایا۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے اچھا اور پرگتیشیل دھرم ہے۔ اینا لنڈا کا جنم آئس لینڈ میں ایک عیسائی پریوار میں ہوا تھا۔ بعد میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ کینیڈا چلی گئیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کینیڈا میں ہی کی۔ اپنی شکشا پوری کرنے کے بعد اینا لنڈا نے وشو کے کچھ دیشوں کی یاترا کرنے کا فیصلہ کیا۔
अपनी आस्था के बारे में एना लिंडा का कहना है कि मुझे बचपन से ही ईश्वर पर आस्था रही है। मेरा मानना है कि संसार को अवश्य कोई बनाने वाला है और वही इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। वे कहती हैं कि इस बात को मैं निसंकोच हर स्थान पर कह सकती हूँ, चाहे लोग मेरा मजाक ही क्यों न उड़ाएं। उनका कहना है कि मैंने बहुत से लोगों से इस मुद्दे पर बहस की है कि ये कैसे संभव है कि सृष्टि की व्यवस्था का कोई संचालनकर्ता अवश्य है। वे कहती हैं कि हम सभी लोगों के भीतर स्वाभाविक रूप में ये विचार पाया जाता है जिसे हमें किसी ने भी नहीं सिखाया। हालांकि दुष्प्रचारों और गलत शिक्षाओं के कारण कुछ लोग इस वास्तविकता को मानने से इनकार करते हैं।
वास्तविकता यह है कि श्रीमती एना लिंडा विश्व के विभिन्न धर्मों के बीच उस ईश्वर की तलाश में थीं, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। इस विशेषता वाले पालनहार को वे अपने धर्म अर्थात ईसाइत में नहीं ढूंढ पाईं। उनका कहना है कि मेरा जन्म प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले परिवार में हुआ था और मैं धार्मिक स्वभाव की रही हूँ, किंतु अपने धर्म की उस बात पर मुझे विश्वास नहीं है जिसमें ईसा मसीह को ईश्वर का बेटा और मरियम को ईश्वर की माता बताया गया है। मैंने पूरी इंजिल पढ़ी, लेकिन उसके भीतर पाए जाने वाले कुछ विरोधाभासों के कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने इस बारे में लोगों से बहुत कुछ जानना चाहा, किंतु मेरी किसी भी बात का संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं मिल पाया।
एना लिंडा का कहना है कि मैंने बौद्ध मत और हिंदुत्व के बारे में भी अध्ययन किया, किंतु कहीं पर ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया तो कहीं पर उसे कई रूप देकर उसकी पूजा की जाती है। वे कहती हैं कि मुझे अब तक ऐसा धर्म नहीं मिल सका था जो एक ईश्वरवाद तक पहुंचता हो। उनका कहना है कि मैंने इस्लाम की ओर कदम इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि पहले से मैंने इसके बारे में ये सुन रखा था कि ये चरमपंथियों का धर्म है। हालांकि इस बारे में मैंने कोई शोध या खोजबीन नहीं की थी, किंतु मैं इससे दूर ही थी।
दोस्तों, एना लिंडा का कहना है कि ये बात मेरे स्वभाव के भीतर थी कि किसी भी बात को मैं दूसरों के कहने पर नहीं मानती हूँ, बल्कि जब तक मुझे किसी चीज़ के बारे में अपने हिसाब से विश्वास न हो जाए मैं उसे नहीं मानती। मेरा मानना है कि किसी भी बात को तर्कों और प्रमाणों के साथ मानना चाहिए, दूसरों के कहने के आधार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एना लिंडा के अनुसार मुझे देशों की यात्रा करने का शुरू से ही शौक रहा है। अपने शोध कार्य के उद्देश्य से एक बार मुझे मिस्र और सीरिया जाना पड़ा।
वे कहती हैं कि पहले मैं मिस्र गई। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद मैं वहां से अपने होटल जा रही थी। दोपहर का समय था और मुझको भूख लग रही थी। मैं चाह रही थी कि जल्दी से अपने होटल पहुंच जाऊं। मैं टैक्सी की प्रतीक्षा में सम्मेलन स्थल के बाहर खड़ी थी। इसी बीच मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी जो अरबी भाषा की लग रही थी। जब मैंने गौर किया तो ऐसा लगा कि वो आवाज़ कई दिशाओं से आ रही है। मैंने अपने साथ आने वाले अरबी भाषा के अनुवादक से पूछा कि ये आवाज़ कैसी है। उसने बताया कि ये अजान की आवाज़ है। मैंने इससे पहले ये आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए पूछा कि अजान क्या होती है। तो उस अनुवादक ने बताया कि नमाज से पहले अजान होती है और उसके बाद लोग नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं। मुझको ये बात बहुत विचित्र सी लगी। बाद में मैं होटल चली गई। कुछ दिन मिस्र में रहने के बाद मुझे सीरिया जाना था। सीरिया में भी मेरे साथ वही हुआ जो मिस्र में हुआ था। यहाँ पर मेरे सम्मेलन स्थल से ये आवाज तेज सुनाई दे रही थी क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर मस्जिद थी। मैंने देखा कि दोपहर के समय लोग बड़ी तेजी से मस्जिद की ओर जा रहे हैं। कायरा की ही तरह दमिश्क में भी दोपहर के समय मुझको बहुत भूख लगी थी और मैं अपने होटल पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। होटल के रास्ते में मेरे मन में ये सवाल आया कि ये समय तो भूख का है और इस समय लोग दोपहर का खाना खाते हैं, मेरी तरह ही यहाँ के लोगों को भी भूख लग रही होगी क्योंकि मैंने देखा है कि भूख के समय लोग तेज से मस्जिद की ओर जा रहे थे। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।
एना लिंडा कहती हैं, मिस्टर और सीरिया की यात्रा पूरी करके मैं वापस तो आ गई किंतु मेरे मन में यही सवाल उठता रहा कि वे लोग क्यों खाने के समय मस्जिद की ओर तेजी से जा रहे थे। मस्जिद में कौन सा ऐसा आकर्षण था जिसकी वजह से वे लोग उस ओर बढ़ रहे थे। यहीं से मैंने इस्लाम के बारे में खोजबीन आरम्भ कर दी। एना लिंडा का कहना है कि पहले मैंने इस्लाम के मूल स्रोत कुरान का प्रबंध करके उसका अध्ययन शुरू किया। अरबी न आने के कारण मैंने इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें लिखी हुई बहुत सी बातें मेरे लिए नई थीं, किंतु उसको पढ़ने से मुझे अपने कई ऐसे सवालों के जवाब मिलने लगे जिनके जवाब जानने के लिए मैं पिछले कई वर्षों से भाग दौड़ कर रही थी। वे कहते हैं कि पहले मैं ये सोचा करती थी कि कुरान को मुसलमानों के पैगंबर और उनके साथियों ने लिखा है, किंतु मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ईश्वरीय ग्रंथ इंसानों द्वारा नहीं लिखा गया। उनका कहना है कि कुरान पढ़कर मुझे ये जानते हुए बहुत प्रसन्नता हुई कि मुसलमान आदम, इब्राहिम, नूह, सुलेमान, मूसा और ईसा सबको ही मानते हैं। बहरहाल कुरान का अध्ययन करने के बाद एना लिंडा ने इस्लाम अपना लिया। हालांकि वे ताज़ा मुसलमान हैं किंतु पवित्र कुरान के बारे में उनकी जानकारी बहुत अधिक है।
वे कहती हैं कि कुरान की एक विशेषता मेरे लिए ये रही कि मैंने जितना अधिक इसका अध्ययन किया उतना ही नई नई बातें मुझको मालूम होती रहीं। वास्तव में कुरान ज्ञान का भंडार है। आइसलैंड की रहने वाली श्रीमती एना लिंडा ने अपनी बातों में नए नए बिंदुओं की ओर संकेत किया कि कुरान को पढ़कर जहां मेरी कई भ्रांतियां दूर हो गईं, वहीं पर मुझको ये भी पता चला कि आरंभिक समय में कुरान का जिन लोगों ने अनुवाद किया था उन्होंने या तो सही अनुवाद नहीं किया था या फिर जानबूझकर उसमें गड़बड़ी की थी। यही वजह है कि उनको पढ़कर बहुत से लोगों के मन में इस्लाम के बारे में गलत विचार आते हैं, जिनमें से एक मैं भी थी, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ ही नहीं है। मुझको लगता है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का भाग हो सकता है। वे कहती हैं कि मेरे मन में भी पहले यही विचार था कि इस्लाम चरमपंथियों का धर्म है और इसको मानने वाले रूढ़िवादी होते हैं, किंतु पवित्र कुरान पढ़ने के बाद मुझको वास्तविकता का पता चला, मेरी भ्रांतियां दूर हुईं, मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई और मुझको एक नया जीवन मिल गया।
बहरहाल इस्लाम के बारे में अनुचित विचार रखने वाली श्रीमती एना लिंडा गहरे अध्ययन के बाद अब मुसलमान हो चुकी हैं। उनका इरादा है कि वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर आइसलैंडी भाषा में पवित्र कुरान का अनुवाद करेंगी ताकि बाद वालों के मन में उनकी तरह इस्लाम के बारे में कोई गलत विचार न आने पाए। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
ایران بھرمڑ۔
دوستو، پروگرام ایران بھرمڑ کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں۔ آج ہم اتری نگر ساری کے بارے میں چرچا کریں گے، آشا ہے پسند کریں گے۔ یہ پروگرام محمد علی قمی لے کر حاضر ہے۔ دوستو، ایران کے اتر میں استھت ہرا بھرا و سندر پرانت مازندران پرکرتی کا خزانہ مانا جاتا ہے۔ مازندران کا پراچین نام تبرستان ہے۔ کہتے ہیں کہ 7ویں ہجری قمری ارتھات 13ویں عیسوی شتابدی میں منگولوں کے حملے کے سمے تبرستان کا نام بدل کر مازندران ہو گیا۔ تاپمان میں پریورتن اور ورشا کی ماترا کے دشٹیگت مازندران پرانت کی جلوایو بھن ہے۔ جیسے پروتی شیتروں کی جلوایو ٹھنڈی اور سنتولت ہے، جبکہ اس پرانت کے پشچم اور کیندر میں استھت میدانوں کی جلوایو البرز پروتمالا کے اتری آنچل تک سنتولت ہے۔ کیسپین ساگر کے نکٹ اور البرز پروت کی دیوار ہونے تتھا پروت ایوم سمندر کے بیچ تھوڑی دوری ہونے کے کارن اس شیتر کی جلوایو سنتولت اور آردر ہے۔ مازندران پرانت میں جلاپورتی کے دو سروت ہیں، ایک مازندران ساگر اور دوسرے بھومیگت کنویں۔ یہاں اس بات کا الیکھ آوشک لگتا ہے کہ مازندران پرانت کیسپین ساگر کے کنارے بسا ہے۔ کیسپین ساگر ایران کے اترکت روس، قزاقستان، آذربائیجان اور ترکمنستان کی سیماؤں سے ملا ہوا ہے۔ یہ سارے دیش بھی اس سے لابھ اٹھا رہے ہیں۔ کیسپین ساگر کو ایران میں آب سکون، خزر اور گرگان ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے، پرنتو ودیشی اسے کیسپین ساگر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا شیتر پھل لگ بھگ 360,000 ورگ کلومیٹر ہے۔ چونکہ وشو کی یہ سب سے بڑی جھیل ہے، اس لیے اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ ساری نگر مازندران پرانت کا کیندریہ نگر ہے۔ یہ نگر مازندران پرانت کے مہتوپورن کھیتروں میں سے ایک ہے۔ ساری نگر کے اتر میں کیسپین ساگر ہے، اس کے پورو میں بہشہر نگر استھت ہے، جبکہ دکشن میں البرز پروت شرنکھلا موجود ہے تتھا پشچم میں قائم شہر اور سواد کوہ نگر موجود ہیں۔ ساری میں کئی ندیاں بہتی ہیں، جن میں سے ایک تجن نامک ندی ہے جو 140 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ ندی کیسپین ساگر میں گرتی ہے۔ تجن کے اترکت ساری سے نیکا نامک ندی ہو کر گزرتی ہے۔ ساری نگر میں ادیوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر پرچلت ادیوگوں میں کھادی ادیوگ، کپڑا ادیوگ، لکڑی ادیوگ، چمڑا ادیوگ، رسائنک ادیوگ، کھنج ادیوگ، پرکاشن، پاسچرائزڈ دگدھ اتپادن آدی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ساری کی ارتھویوستھا کا آدھار کرشی اور پشو پالن کو بتایا جاتا ہے۔ یہاں کی زمین بہت اپجاؤ ہے۔ ساری کو پریٹن کا کیندر بھی کہا جاتا ہے۔ ساری نگر ایران کے ان کھیتروں میں ہے جہاں پر ورشا ادھک ہوتی ہے۔ ساری نگر میں پراکرتک آکرشنوں کے علاوہ کئی بہمولیہ ایتیہاسک آکرشن موجود ہیں، جیسے میدان ساعت، مجد الدین کا مقبرہ، امام زادے یحییٰ کا مقبرہ، سلطان زین العابدین کی مینار اور جامع مسجد آدی۔ یہاں پر صفوی کال کے ایک محل، مسجد اور حمام کے کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ ساری نگر کے کیندر میں میدان ساعت استھت ہے جو بہت مشہور ہے۔ ساری نگر کے کیندری اسکوائر کے بیچ میں ایک گھنٹہ گھر ہے۔ اس کا نرمان سن 1309 ہجری شمسی میں اور کیندری اسکوائر کا نرمان 1355 ہجری شمسی میں محمد علی حمیدی کے مادھیم سے ہوا تھا۔ نگر کے پراچین حصے میں رامدانیہ، نازریہ، فضلیہ اور کولبادی نام کی پرانی عمارتیں موجود ہیں۔ مازندران پرانت کا کیندری نگر ساری ایران کے پراچینتم نگروں میں سے ایک ہے۔ لکھت پرماڑوں کے آدھار پر ساری نگر کو پہلی ہجری قمری شتابدی میں تتکالین تبرستان ارتھات ورتمان مازندران کے شاسک فرخان نے اپنے بیٹے کے نام پر بنایا تھا۔ اس نگر نے اتہاس کے اتار چڑھاؤ کو بہت نکٹ سے دیکھا ہے۔ عباسی شاسک منصور نے اس نگر کو جیتنے کے بعد یہاں پر ایک مسجد بنوائی۔ سن 260 ہجری قمری میں ساری پر یعقوب لیث صفاری نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ نگر اسماعیل سامانی کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ کچھ سمے تک ساری کا نینترن آل زیاد اور آل بویے کے ہاتھوں میں بھی رہا۔ صفوی شرنکھلا کے شاسکوں کو مازندران سے بہت لگاؤ تھا۔ شاہ عباس نے کئی بار مازندران کی یاترا کی اور اس کے آدیش سے اشرف بلاد نگر کا نرمان کیا گیا۔ اٹلی کے ایک پریٹک پیٹرو ڈیلا والے نے شاہ عباس کے شاسن کال میں ایران کی یاترا کی تھی۔ اس نے شاہ عباس کے کال کے ایران کے پریچے کے بارے میں یاترا ورتانت بھی لکھا ہے۔ اس نے اپنے یاترا ورتانت کے ایک بھاگ کو ہرے بھرے اور سندر مازندران پرانت کے پریچے سے وشیش کیا ہے۔ سن 426 ہجری قمری میں محمود غزنوی ساری پہنچا۔ سن 795 ہجری قمری میں تیمور لنگ نے ساری میں بھیانک جن سنہار کیا۔ ساری نگر منگولوں کے حملے میں نشٹ ہو گیا۔ بعد میں صفوی شاسکوں نے ساری کے پرتی وشیش روچی دکھائی۔ شاہ عباس صفوی کے کال میں ساری میں وکاس کا کام ہوا اور تجن ندی پر پل بنائے گئے۔ قاجاری شاسن شرنکھلا کے سنستھاپک آغا محمد خان نے ساری کو راجدھانی کے روپ میں چنا۔ انہوں نے نگر کے ارد گرد عمارتیں بنوائیں اور سندر باغ لگوائے۔ اس پرکار ساری کا وکاس ہوا۔ ویاپار اور پرشاسن کے کھیتر میں مازندران میں ساری نگر کی مہتوپورن بھومیکا ہے۔ نئے سمپرک مارگوں اور ہوائی اڈے کی استھاپنا کے ساتھ یہ پرانتیہ کیندروں میں سب سے مہتوپورن بن گیا ہے۔ ان کاموں سے پریٹن کو بڑھاوا ملا ہے۔ ساری میں بارش ادھک ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ادھکانش دنوں میں یہاں پر بارش ہوتی ہے۔ یہاں کی جلوایو آردر ہے۔ یہی جلوایو یہاں پر برف کو جمنے سے روکنے میں سہائک ہوتی ہے۔ ساری میں چاروں اور ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ ایتہاسک کلبادی عمارت کا سمبند منوچہر خان کلبادی سے ہے۔ یہ عمارت لگ بھگ 150 سال پرانی ہے۔ ورتمان سمے میں یہ عمارت ایران کے سانسکرتک دھروہر سنگٹھن کے نینترن میں ہے۔ اس کی واستوکلا شیلی کا سمبند قاجاری کال کی عمارتوں سے ہے۔ عمارت کی دوسری منزل اس کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اس میں قاجاری کال کی واستو نرمان کلا شیلی کو اسپشٹ روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمارت کا ایک بھاگ سنگرہالے سے وشیش کیا گیا ہے۔ سنگرہالے کے بھیتر جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ تو 7000 سال پرانی بھی ہیں۔ یہاں پر دھاتو، مٹی، شیشے اور پتھر سے بنی ہوئی بہت سی وستوؤں کو پردرشت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ساری نگر میں آدھونک بازاروں کے ساتھ ہی ساتھ پارمپرک بازار بھی موجود ہیں۔ یہاں کے پارمپرک بازار اتنے آکرشک ہیں جو بھی پریٹک یہاں پر آتا ہے وہ ان بازاروں کو دیکھنے اور ان میں خریداری کرنے کے لیے ضرور جاتا ہے۔ ساری کے پارمپرک بازاروں میں سے ایک کا نام نرگسیے ہے۔ نرگسیہ بازار ساری کا بہت ہی پراچین و پارمپرک بازار ہے۔ یہاں پر بہت پہلے سے لوگ خریداری کے لیے آتے رہے ہیں۔ اس بازار میں ہمیشہ ہی بھیڑ رہتی ہے۔ نرگسیہ بازار میں ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کو بھی بیچتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو سامانیتہ استھانی لوگوں دوارا بنائی جاتی ہے۔ اس بازار کو ایک پرکار سے اون کا کیندر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اون سے بنی ہوئی چیزیں بکنے کے لیے رکھی رہتی ہیں۔ نرگسیہ بازار میں پہنچنے کے بعد آدھونک بازار کا درشیہ خریداروں کے من سے نکل جاتا ہے۔ सारी नगर के इर्द गिर्द फैले सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य ने इस क्षेत्र में कई प्रकार की संभावनाओं को जन्म दिया है, जिनमें से एक जंगली पशुओं का शरण स्थल भी है। सारी से 5 किलोमीटर की दूरी पर सेमिस्कंदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 हेक्टेयर है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ अन्य ऐसे स्थान हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पशु और पक्षी स्वतंत्रता से वास करते हैं। इस क्षेत्र को ईरानी तीतरों की प्रजातियों की रक्षा के लिए विशेष किया गया है। यहाँ पर ईरानी पीले हिरणों को भी बहुत करीब से देखा जा सकता है। सारी के प्राकृतिक स्रोतों में से एक बादाब सूरत भी है। बादाब का अर्थ होता है गैसों वाला पानी और सूरत का अर्थ है तेजी, अर्थात तेजी से निकलने वाला गैसों का पानी। ये ईरान का अद्वितीय झरना है और दुनिया में ही इसकी मिसाल बहुत कम है। ये झरना सारी नगर के अरस्त गांव में स्थित है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये दो झरने हैं जो रंग, स्वाद और सुगंध की नज़र से बिल्कुल ही अलग हैं और साथ में भी बहते हैं। इनमें से एक में चिकित्सा गुण पाए जाते हैं जो खारी है, जबकि दूसरा नारंगी रंग का है जिसका मज़ा खट्टा है। दोस्तों, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए सारी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उल्लेख हम इस कार्यक्रम में नहीं कर पाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिए। ये कार्यक्रम था ईरान भ्रमण, जिसे पेश किया मोहम्मद अली कुमी ने। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की आज की सभा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.